नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच ते नागराज मामंत्र्य फलभागेन वासुकीं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्वितः श्रीशुक उवाच ते नागराज मामंत्र्य फलभागेन वासुकीं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्वितः आरेभिरेषु संयत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा ते देवता और असुरगण नागराजन नागों में श्रेष्ठ आमंत्र्य प्रार्थना करके फल भागे न अमृत रूपी फल में आपका हिस्सा होगा यह कहकर वासुकी वासुकी को परिवीय लपेट कर गिरौ पर्वत में तस्मीन उस विशाल पर्वत में नेत्रां नेति के रूप में अब्धिम समुद्र मत में लगे मुदान्विता बड़े आनंद के साथ आरे भीरे आरंभ किए सुसंयत्ता बहुत परिश्रम करने के लिए तैयार थे अमृतार्थे अमृत प्राप्ति के लिए कुरुद्वह हे कुरुकुल में श्रेष्ठ परीक्षित तुम कुरुकुल के पालक हो जब अपने परिवार में साधन संपत्ति होती है तो प्रसन्नता होती है तो आज से समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है सारा सामान जुट गया है तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं ते सबसे पहले तो कुरु द्वह संबोधन कर रहे हैं कुरु उद्वह कुरु द्वह जो कुरु अर्थात कुरु वंश को उद्वह ऊंचा वहन करे उठावे जिसके जन्म लेने से कुरु वंश का नाम उजागर हो वह कुरुकुल श्रेष्ठ परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं कि परीक्षित जैसे अपने वंश में बहुत साधन मिलता है साधन संपत्ति मिलती है कोई काम करने के लिए सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है ऐसे ही देवताओं और दानवों को प्रसन्नता हुई इसका अनुभव तुम्हें है तो हे कुरुद्वह हे कुरुकुल तिलक फल भागे न नागराजुम वासुकीम आमंत्र्य अमृत रूपे फले तव अपि भागो भविष्यति इति एवं नागराजम वासुकीम आमंत्र संप्रार्थ्य। देवता और दानव जाकर के नागराज वासुकी से विनय किए, कृपया आप मंदराचल में नेती बन जाइए, मथने की रस्सी, ऐसा भगवान ने कहा है। और जब अमृत उत्पन्न होगा तो उसमें आपको यथा योग्य भाग मिलेगा, और सब कुछ जितना मिलता है उतना ही नहीं, इनका ज्यादा महत्व है, तो इसलिए इनको कुछ अधिक मिलेगा। जथा भाग अथवा ये कहे कि जथा परिश्रम आपको मिलेगा, इस तरह से आमंत्रणा की, उनसे प्रार्थना की, तो ये तैयार हो गए। अमृत पीने के लिए कौन नहीं तैयार होगा, थोड़ा देह टूटेगा, परिश्रम होगा, क्या हर्ज है, तैयार हो गए। तो हम लाए, उनको लाए नहीं, वे आए उनके साथ, उनके साथ आ गए। वो तो एक देवता है नागराज वासुकी, वे आ गए उड़ करके वहां, और पर्वत में स्वयं ही घूम करके लपेट लिए। ऐसा नहीं कि डोरी की तरह वे मरे हुए थे और देवता लोग लपेटे, ऐसे कहा जा रहा है कि परिव या गिरव तस्मिन नेत्र, उस नेत्र को, नेत्र बने हुए बासुकीनाग को लपेटा गया, लेकिन लपेटने का मतलब यह है कि वे स्वयं ही सरसर कई बार निपट गए बड़े वेग से। तो इस तरह से तैयार हम, जब वे नेति के रूप में पर्वत में लपेट दिए गए तो बड़े प्रसन्न हुए देव दानव, मुदान्विता, मुदा अन्विता, हर्ष से युक्त हो गए, और सुसंयत्ता, परिश्रम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अवधि मथितुम आरे भिरे, मथितुम छिपा हुआ है, समुद्र को मथना प्रारंभ किए। तो समुद्र मथना प्रारंभ किए मतलब प्रारंभ करने जा रहे थे, ये अर्थ, वर्तमान समीपे वर्तमान वक्त, कोई काम बहुत जल्दी होने वाला है भविष्य में, वर्तमान के समीप है, तो उसको वर्तमान जैसा ही कह दिया जाता है। ये पाणिनि जी का सूत्र है, वर्तमान समीपे वर्तमान वक्त, अरे भिरे मैंने आरंभ कर दिए, अर्थात आरंभ करना या चालू ही करने वाले थे। तो वासुकी नाग के 1000 फण है मुख्य, 1000 फण, और उसके अनुसार 2000 आंख है और 2000 नाक, 2000 मुख है, 1000 मुख है, 2000 आंख, 2000 नाक। तो वासुकी नाग जब खींचे जाएंगे मंदराचल में तो उनकी सांस तेज हो जाएगी, तो ऐसे स्वाभाविक ही उनके नेत्रों से, उनके नाक से, नाकों से और मुख से धुआं और आग निकलते रहते हैं। तो जब मथा जाएगा, सांस तेज हो जाएगी, तब तो धधकती हुई आंखों से, नाक से, मुख से अग्नि निकलेगा, आग और इसके साथ धुआं, तो आग और धुआं से जो निकट रहेगा वो झुलसेगा और दग्ध होगा। इसीलिए भगवान अजित क्या ट्रिक किए कि ये चाहे कि अगर हम लोग जो कार्य करना चाहेंगे तो असुर जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं हम करेंगे, इसीलिए भगवान उन लोगों को मुख की तरफ लगाने के लिए जाकर के वासुकी नाग का मुख पकड़ लें। तो भगवान के पीछे पीछे उनके भक्त देवता चलते हैं, तो जब भगवान मुख पकड़े तो देवता भी जाकर के उधर लगे। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी यहां कह रहे हैं कि पुरस्तात, पुरस्तात का अर्थ है कि मुख को पकड़े भगवान अजित, पूर्वम, पहले, मतलब देवता और दानव में सबसे पहले पूर्वम पुरस्तात हरि जगृह है, हरि भगवान अजित जा करके मुख पकड़ लिए, तो देवा तत्व भूगल तो देवता भी सब जाकर के मुख की तरफ पकड़ लिए। तो दैत्यों में जो सरदार थे, बड़े बड़े दैत्य, ये बिल्कुल चुप रहे, खड़े हो गए। तन्मैछत दैत्य पते हो महापुरुष चेष्टितम, महापुरुष श्री विष्णु के इस चेष्टा को वे लोग पसंद नहीं किए, कुछ कह नहीं रहे थे, आपस में भनभना रहे थे, चाहे कुछ भी कह नहीं रहे थे। जब मानो भगवान ने, अजित भगवान ने संकेत किया कि तब लगा जाए, सब सामान जुट ही गया है, अब समुद्र में डाल करके पर्वत को और मंथन चालू किया जाए, भगवान पकड़े थे और इशारा कर रहे थे कि तब उधर लगा जाए। कुछ सेनापति लोग, कुछ दैत्यपति लोग कहने लगे का हमने के हल खोल डोम है जाते भोजपुरी ने शब्द हम लोग कोई नीच जाति के हैं क्या, ये हगने मुतने वाले अंग पकड़ेंगे, चलाक बनते हो, आपस में कह रहे थे, सुना करके नहीं कहे कि हम लोग कोई हीन वंश के हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो बोले नहीं और चुपचाप खड़े हो गए, आपस में एक दूसरे को कहे ये देखो इसका, ये सब मुख पकड़ेंगे और हम लोग पुष्प पकड़ेंगे। अरे आखिर कोई इधर उधर पकड़ेगा तभी ना मंथन चालू होगा, उसको भी कहना चाहिए ठीक है भाई, हम नहीं, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। आखिर दो दल है तो कोई न कोई किसी अंग को पकड़ेगा ना, तो जब देवता लोग मुख पकड़ रहे हैं तो ये लोग चुप खड़े। न गृहीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम, हमें अही के इस सर्प के अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे। अमंगल अंग क्या है, पूछ है, उधर ही मूत्रालय है, स्वच्छ कर रहा है, और ये हम अंग पकड़े हम भंगी है क्या। न गृहीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम, हम सर्प के इस अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे। न गृहीमा स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी, अरे हम लोग भी स्वाध्याय किए हैं, वेदों का अध्ययन किए हैं, अनेक कला शास्त्र विज्ञान जानते हैं, साइंस में इतना प्रगति किए हैं, हम में से कोई दैत्य ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़े। तो इस तरह से बोल रहे थे स्वाध्याय श्रुत संपन्न, हम लोग गुरुजनों से सुने हैं, पढ़े हैं, स्वयं पढ़े हैं और अनेक कला आदि का अभ्यास किए, और जन्म में भी हम प्रसिद्ध हैं, हमारा जन्म कश्यप जी से हुआ है, कश्यप जी से हमारा गोत्र चला है, जन्म में हम प्रख्यात हैं, और जन्म ही नहीं लिए केवल सिंपली, कर्म भी किए हैं बड़ा बड़ा, कर्म से भी विख्यात, बड़े कुल में जन्म है और बड़ा बड़ा काम किए हैं, दिग्विजय आदि किए हैं, तो हम नहीं पकड़ेंगे पूंछ। इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक के पुरुषोत्तम स्मय मानो विसिर जागरम पुच्छम जग्राह सामर, तो जब असुर इस तरह से बोल करके इसको चुप हो गए या इस अभिप्राय से चुप हो गए, तो बोले नहीं थे, जो मैं बात यहां बोला सुखदेव जी बोल रहे हैं वो आपस में कह करके चुप, इति तुष्णिम स्थितान बिल्कुल चुप रहे, ना महाई नहीं बता जाएगा, ये काम नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग मुख पकड़ेंगे, तुम लोगों को पूछ पकड़ना है पकड़ो। तो वो लोग क्या बहुत छोटे कुल के हैं, देखिए देवता भी तो कश्यप जी के ही संतान है ना, और वे लोग भी स्वर्ग के जीतने वाले हैं। उसमें इंद्रदेव तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले किए हैं, कितने प्रख्यात हैं वे, और भगवान का तो कहना ही नहीं। और भगवान की महिमा तो ये लोग जानते नहीं थे कुछ भी, ये कहकर चुप हो गए। हम लोग नहीं मान, मन नहीं मथेंगे। तो स्मयमान पुरुषोत्तम, अब भगवान पुरुषोत्तम हंसने मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि इतना मान में पड़ रहे हो, अपने मन में कहे कि इतना मानी हो रहे हो, तो वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली आग में झुलसोगे। ठीक है, अच्छा हुआ, ये स्मरण करके भगवान पुरुषोत्तम मुस्कुरा रहे थे, और विसर्ज अग्र मुख छोड़ करके पूछम जगरा है। तो देवता भी सब जाकर के पूछ पकड़ ले, तब लोग चले बड़े शान के साथ पकड़े मुख। उनका भाव ये था कि हम जानते हैं कि सांप बहुत खतरनाक है, कहीं दस देगा निकट मुंह से खतरा होता है ना, दस देगा तो कुछ होगा, चाहे इसकी गर्मी निकलेगी, इसके मुख से आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, फिर भी ये तो नाम होगा ना कि हम लोगों ने मुख पकड़ा है। मरेंगे शान से मरेंगे, जिएंगे शान से जिएंगे, ऐसे पूछ पकड़ करके अपना नाम बदनाम तो नहीं करेंगे। सांप का मुंह पकड़ना खतरनाक, लेकिन भगवान चाहते थे उन लोगों से कि यही पकड़े मुख, इसीलिए पहले मुख पकड़े। श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रसंग में लिखते हैं कि देवता जो करते हैं उसका विरोध करना यही असुरों का स्वभाव है, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनको क्या ऐसे करना चाहिए, स्वभाव है। यदि देवता विष पीते ले लेकर के कटोरी में, तो सबसे पहले छीन कर ये पी जाते और मर जाते, पहले ये मरते। एक कहावत है कि एक बार एक राजा के यहां रानी को बुखार आया, और साथ साथ उसी दिन रानी के नौकर को भी बुखार आ गया। तो राजकीय वैद्य डॉक्टर भेजे गए चेकअप करने के लिए, बुखार ना पिए किसको क्या दवा दिया जाए। तो रानी को 101 डिग्री बुखार था, कम था, और नौकर को 104 डिग्री उसने रिपोर्ट दिया, तो रानी रंज हो गई डॉक्टर पर। राजा से उसने कहा कि इसको तुरंत डिसमिस करो, इस डॉक्टर को, किस काम का डॉक्टर है, नौकर को 101 डिग्री दिया और हमको 104 डिग्री दिया और हमको 101 डिग्री, ये कैसा डॉक्टर है। मैं रानी हूं, किसी भी विषय में मुझे आगे रहना चाहिए, बुखार भी आया तो हमको ज्यादा आना चाहिए, नौकर को क्यों आएगा ज्यादा। नौकर इन्फेरियर है तो उसको कम बुखार होना चाहिए ना। बाहर रानी होकर के और 101 डिग्री और नौकर को 104 डिग्री, तो ये स्थिति होती है। हम मरेंगे भी तो शान से मरेंगे, कुछ भी हो दिक्कत हो हम मुख पकड़ेंगे। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, ठीक है तब मरो, हम क्या करें, मरोगे तुम लोग वासुकी के आग की ज्वाला से। ये कह करके अपने भक्तों के साथ श्री भगवान कुछ पकड़ लिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मानम गृहीत्वा जूयमेव मृयध्वम इति अभिप्रायेण अस्मयमान। ठीक है, इतना बड़ा बन रहे हो तो तुम लोग मरोगे, बड़े दुख से मंथन करोगे, इस अभिप्राय से श्री भगवान मुस्कुरा रहे थे। स्मयमान कृतस्थान विभागास्ते एवं कश्यप नंदनः ममंथु परमायत्ता अमृतार्थम पयो निधिम। इस प्रकार कश्यप नंदना कश्यप जी की संतान देवता और दैत्य दोनों कृत स्थान विभागा स्थान विभाग किए, देवता पूछ के तरफ लगे और दैत्य मुख के तरफ, और मुख के तरफ भी या पूछ के तरफ भी स्थान विभाग किए, कौन व्यक्ति आगे खड़ा रहेगा, कौन यहां खड़ा रहेगा, कौन किधर रहेगा, कौन क्या रहेगा। इस रथ यात्रा में भक्त लोग स्थान विभाग कर देते, इधर माता जी लोग रहेंगे, इधर पुरुष रहेंगे, और उसमें भी स्थान विभाग किया गया कि आगे कौन रथ के निकट कौन रहेगा, दूर कौन रहेगा, ही रहेगा, ये सब स्थान निश्चित किया गया। ये नहीं कि कभी कुछ यहां लगा है तो फिर जाकर वहां लग जाए, वहां लग गए, नहीं, बिल्कुल कंप्लीट किया गया, कौन फ्रंट पर आएगा, कौन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, सब विभाग किया गया, स्थान विभाग उसको कहते हैं। फिर तो स्थान विभाग आस्ते एवं कश्यप नंदना, और इसके बाद अमृतार्थम अमृत प्राप्ति के लिए पयो निधि समुद्र को मथना चालू किए परम प्रयत्न के साथ, परमायत्ता बहुत उत्कृष्ट, जो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो उसको कहते हैं यत्ता, बिल्कुल जम करके मेहनत करने के लिए तैयार। जैन ही मंथन दंड को मंदराचल को पकड़ करके सांप को ऐसे पकड़े और उठाए, मंदराचल को उठा करके जैन ही दूध पर जल पर रखे, मथ्य माने अरणवे सुदृढ़ अना भारो यपो विशत ध्रिय माणो की बलभीर गौरवाद पांडुनंदन। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन परीक्षित, जब दोनों दल मिल करके मंदराचल को जल पर उतारे तो जल में कोई आधार नहीं था भीतर पर्वत को उठाने के लिए, टांगने के लिए, जब ही मथना चालू किए तेव ही पर्वत डूब गया समुद्र में, अनाधार निराधार था, कोई टिकने के लिए जमीन चाहिए ना नीचे, तो आपस में कहते रहे हाँ हाँ धरो धरो धरो, भारी लग रहा था कि अब नीचे जा रहा है, लेकिन सरक करके पर्वत नीचे चला ही गया, ही अपो अभिषक जल में घुस गया। ध्रिय मानो की बलि भी बड़े बलवान लोग पकड़े हुए थे, इधर देवता और उधर दैत्य, इधर इंद्र उधर बलि महाराज, और पवलोम कालके अलवल इलवल इत्यादि बड़े बड़े दैत्य पकड़े थे, बहुत बलि भी बलवान थे पकड़े थे, कोई सांप के द्वारा और कोई कोई हाथ से भी पकड़े थे, लेकिन ही अपो अविशत अपह अविशत जल में चला गया। इतना प्रयास करके मंदराचल आया, यहां तक श्री भगवान पहुंचाए थे हाथ से उठा, एक हाथ से उठा करके, और यहां देवता और दानव उसको संभाल नहीं पाए, फिर डूब गया। तो जब पहाड़ डूब गया तब ये बहुत खिन्न मन वाले हो गए, तेसु निर्विण मन सुनिर्वीण मना परिम्लान मुख श्रिय आसन सौ पौर से नष्टे दैवे नाति बलियस, दैव अत्यंत बलवान है। इतने प्रयास करने के बाद, बड़े बड़े बलवानों के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पर्वत डूब गया, तो वे सब अत्यंत खिन्न हुए, खिन्न मन हो गया। निर्वीण का अर्थ है कि बेकार ये सब काम करने चले, इतना भारी मेहनत के बाद भी पहाड़ डूबे, अब कौन निकालेगा, अब किसमें शक्ति थी कि डूबे, जब बाहर से पकड़ करके रख ही नहीं सके तो ये सब नीचे जाकर मरेंगे, अब कौन निकालेगा। इसलिए सुनिर्वीण मना, सु का अर्थ सुष्ट, अति ज्यादा खिन्न मन हो गया, और इसलिए परिम्लान मुखश्रिय, जो हंस रहे थे जय जयकार कर रहे थे जय बजरंग बली बोल रहे थे, सब खिन्न मुख की शोभा कुंभला गई, एकदम रोने लगे। संसार वास्तव में ऐसा ही है, यहां व्यक्ति प्रयास करता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अनेक विफलताएं मिलती हैं, तिरस्कार मिलते हैं, हानि होती है। दिखाया जा रहे हैं कि इतना प्रयास चल रहा है देवताओं का, दानवों का, लेकिन परिम्लान मुखश्रिय, चेहरा एकदम मलिन हो गया, मन भी बिल्कुल खिन्न हो गया, क्योंकि इतने बड़े पुरुषार्थ को, पौरुष को दैव ने नष्ट कर दिया है। यहां दैवेन का अर्थ है दैव, और एक अर्थ है श्री गणपति जी, जिनकी उनकी पूजा नहीं की गई। ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो कोई न कोई विघ्न भेज देते हैं। गण का अर्थ होता है विघ्नों का गण है, और उनके मालिक जितना विघ्न डिपार्ट है, जितनी प्रकार की अड़चने हैं, दिक्कत है, उस सबके मिनिस्टर गणपति जी हैं। तो उनकी पूजा होती है तो सारे विघ्नों को सचेत कर, कोई विघ्न नहीं डालेगा, और नहीं पूजा होने पर फिर छूट दे देते हैं। तो यहां पर भी श्री भगवान दिखाना चाहते हैं कि गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ती है। लोक में शिक्षा देने के लिए भगवान ने स्वीकार किया कि पर्वत डूब जाए, वास्तव में भगवान ही डुबाए उसको, गणपति जी नहीं डुबाए, क्योंकि गणपति स्वयं एक देवता है, उनके ग्रुप के लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो एक नया क्यों करेंगे कि पर्वत डुबा देंगे। लेकिन भगवान ने दिखाना चाहते थे कि पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं करने पर विघ्न होता है, इसलिए पर्वत को डुबाया गया। तो देवता और दैत्य सब खिन्न हो गए। अब वो क्या करे, देवता लोग तो हरे कृष्ण जप रहे होंगे और दैत्य तो एकदम खिन्न हो गए, तट पर बैठ गए और सोच रहे अब क्या किया जाए, पर्वत निकले तब तो मंथन चालू हो। तो वहां पर भगवान अजित थे, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब भगवान ने उपाय किया, विलोक्य विघ्नेश विधिंत देश्वर दुरंत विरजो वितथा भिसंधि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतम् महत् प्रवीशतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान ने, ईश्वर ने सर्वम कर्तुम समर्थ, ईश्वर सब कुछ करने में जो समर्थ हैं वे प्रभु, और अवितथा विसंधि जिनका संकल्प सदा सत्य होता है और जिनका अपार बल है, ऐसे भगवान श्री हरि ने देखा विघ्नेश विधिन, विघ्नेश का ये प्रकार है, श्री गणेश जी का ये प्रकार है, पर्वत को डुबा दिए। तो श्री भगवान उस समय कृत्वा बपुः काच्छपम अद्भुतम, कच्छपावतार धारण किए। कच्छप के दो विशेषण सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अद्भुतम और महत। वह कछुआ अद्भुत था, उसका रंग आकार अनेक प्रकार के रंग उसमें थे, अद्भुत कछुआ, ऐसा कभी कोई सुना नहीं ना कभी देखा है, ऐसा कछुआ भगवान बने, और महत बहुत बड़ा, अद्भुत कच्छप और महत कच्छप। तो सब लोग देखे कि भगवान कच्छप दुरूप धारण करके, कृत्वा बपु करके और जल में प्रवेश कर रहे हैं, जल में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद फिर पर्वत को उठा दिए। भगवान अपने पीठ पर मंदराचल को उठा लिए और दिखाई पड़ने लगा ऊपर, तो देवता लोग बड़े खुश हुए, दैत्य खुश हुए, बहुत बहुत प्रसन्न, भगवान उठाए उस पर्वत। यह है श्रीमद् भागवतम, प्रत्येक श्लोक में अक्षर में भगवान की महिमा गाई गई। भगवान का देखिए पराक्रम, उस जल में सारे देवता मिलकर गोता लगा करके भी अब इसको उठा नहीं सकते थे, उसको भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके जाकर के उठा दिया। यह भी नहीं था कि उनके ऊपर उठा करके पीठ पर कोई रखे, स्वयं गए जल में डूब करके और उसको ऊपर उठाया। जब ऊपर उठाया तो पर्वत का शिखर ऊपर आ गया। कभी कभी भक्त पूछते हैं, एक बार पूछा था कभी कभी गांव पर हमारे, कि तो जब पर्वत डूबा तो वासुकी भी उसी में हंसता करके चले गए थे, उसी के साथ चले गए थे क्या है? तो हमने कहा नहीं नहीं, देवताओं के दैत्यों के हाथ में सरक करके वो आ गए थे। अब जो भी हो, हमको तो वास्तव में मालूम नहीं है कि क्या मैं यहां पर लिखा गया है। बस की नाग भी पर्वत के साथ डूब गए थे कि निकल गए, निकल आए थे। जो भी हो, पर्वत आ गया ऊपर तो ये लोग प्रसन्न हो गए, उस पर्वत को उठा लिया भगवान ने। तो भगवान कच्छप का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। तमुत्थितम वीक्ष कुलाचलम पुनः समुत्थिता निर्मथितुम सुरासुरा दधार पृष्ठे नसलक्ष योजना प्रस्तारिणा द्वीपैवा परो महान। सुरा सुरा सुर और असुर गण उस कुलाचल को, उस पर्वत को उत्थितम वीक्ष उठा हुआ देख करके, तो ये लोग भी उठे। तट पर सब गिर गए थे, अब गिर गए थे ना, बैठे थे बिल्कुल खिन्न होकर के। जब पर्वत उठा अपने आप, भगवान ने उठा दिया, ये लोग सब समझ गए कि पर्वत को विष्णु ने उठाया है। तो ये लोग भी उठे, समुत्थिता ठीक से उठे। क्या करने के लिए? निर्मथितुम समुत्थिता, मंथन करने के लिए उठे। उस समय श्री भगवान अपने पीठ पर पर्वत को धारण किए, पीठ पूरा ऊंचा दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस जल में डूबा हुआ था, लेकिन जल के भीतर साफ दिखाई पड़ रहा था। भगवान अपने पीठ पर धारण किए मंदराचल को, पीठ की सीमा, पीठ का प्रस्तार विस्तार 1,00,000 योजन था। एक योजन 8 माइल का होता है, तो 8,00,000 माइल विस्तार की पीठ थी भगवान कच्छप की। और भगवान कच्छप स्वयं ही एक द्वीप की तरह लग रहे थे, पीठ तो अलग है और सब हाथ पैर सब जो था मिलाकर एक द्वीप की तरह दिख रहे थे, जम्बू द्वीप की तरह, और पीठ 1,00,000 योजन विस्तार का था। भगवान कच्छपावतार के विस्तार चौड़ाई आदि का वर्णन कर रहे हैं। इस पर भगवान ने मंदराचल को धारण किया। और इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान ने भ्रमण करते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, भ्रमित हो रहा था, रगड़ा जा रहा था देवताओं और दानों के द्वारा, पर भगवान को उससे कोई क्लेश नहीं हुआ बल्कि सुख हुआ। उसको इस श्लोक में कहते हैं, सुरा सुरेन्द्र भुजगिर जबे पितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत तदावर्तन मादि कच्छपो मेनेंग कंडूयनम प्रमेयः। पृष्ठोपरि गुरुतर पर्वत परिभ्रमणेन न च तस्य कष्टम् प्रत्युत सुखम एव अभूत इत्याह सुरेत। पर्वत घुमाया जा रहा था भगवान के पीठ पर उससे भगवान को कोई कष्ट नहीं हुआ बल्कि आनंद हुआ। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, सुरा सुरेंद्र ही देवताओं में जो प्रधान थे उनके और दैत्यों में जो प्रधान थे सबके भुजबीज वेपितम उनकी भुजाओं के वेग से कंपित अर्थात भ्रमित जोर से परिभ्रमंतम परितः भ्रमंतम गिरिम पृष्ठतः पृष्ठे विव्रत। अपनी पीठ पर भगवान कच्छप देव धारण किए थे और उसका आवर्तन उसका भ्रमण घुमाया जाना चक्की की तरह कैसा लग रहा था भगवान को, अंग कंडुयनम मेने, भगवान ऐसा माने कि हमारी पीठ को कोई खुजला रहा है अच्छा से, और उस खुजलाहट से भगवान को नींद आ गई, आराम से सो गए। यह किसी भी पहलवान को सोया हो और एक क्विंटल का पत्थर लेकर के रगड़ी है तो नींद आएगी, जो ही नींद हो भी हराम हो जाएगी। भगवान के ऊपर 1,00,000 योजन ऊंचा पर्वत घुमाया जा रहा है, सोने का पर्वत। और श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद भागवत के 13वें अध्याय द्वादश स्कंध के इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडुयनात् निद्रालोभ कमठ कृतेर भगवत श्वास नीला पांतु वह जत संस्कार कलानुवत जत संस्कार कला नुवर्तन वशात वेला निभे नाम भसां याता यातम तंद्रितम न जल्द अद्याति विश्राम्यति। सूत गोस्वामी भगवान कच्छप की वंदना कर रहे हैं कि जिनके पृष्ठ पर मंदराचल बहुत जोर से घुमाया जा रहा था, देवता और दानव बड़े उत्साह के साथ खींच रहे थे, इधर खींच रहे थे उधर खींच रहे थे, घरार 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 पीठ पर रगड़ा जा रहा है और उसमें सोने की चट्टान थे, चट्टान चिकना नहीं था पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टाने थे और नुकीली चट्टाने और वो चट्टाने रगड़ खा रहे थे, पर ऐसे रगड़ से भगवान कच्छप देव को निद्रा आ गई और निद्रा आई तो उनकी सांसें दीर्घ हुई। जब आदमी सोता है तो सांस लंबी चलती है, ज्यादा चलती है, उस सांस से आंदोलित समुद्र आज तक विश्राम नहीं कर रहा है, इसके जल आंदोलित हुए भगवान कच्छप देव के सांस से, इसलिए ज्वार भाटा आता है या तरंगे उठती रहती हैं। जलनिधि नाद्यापि विश्राम नहीं, जलनिधि के जल का आना जाना यातायात आज तक विश्राम नहीं कर रहा। ऐसे भगवान कच्छप देव के श्वासा नीला श्वास की वे हवाएं आप सबका मंगल करें, ऐसा वो कह रहे हैं। श्वासा नीला पांतव, भगवान कच्छप देव के सांस की हवा आपका मंगल करे, आपकी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठ धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठ केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री भगवान ने यह कच्छप रूप धारण किया, जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय आवश्यकता समझ कर जयदेव महाकवि परम भक्त इसका गान किए दशावतार में। क्षितिरी है विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर कच्छप रूप पाठ भेद है। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान का यह अवतार बड़ा ही मंगलमय है, भक्तजन इसकी याद करते हैं। तो शुद्ध गोस्वामी भागवत शेष करते समय अंत में भगवान कच्छप देव का स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। सुरा सुरंद्र भुजवीर्ज बेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठत चक्कर काटते हुए भ्रमण करते हुए पहाड़ को अपने पीठ पर धारण करना, वो भी मंदराचल को 10,000 डजन ऊंचा, 10,000 डजन ऊंचा था, मैं गलती से बोल दिया 1,00,000 डजन ऊंचा नहीं, मेरू पर्वत 1,00,000 डजन ऊंचा, यह 10,000 डजन ऊंचा है मंदराचल, सोने का पर्वत। ऐसा पर्वत भगवान के पीठ पर घूम रहा था। हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान की ये लीलाएं दी गई हैं और भक्तों के चित्त में छाई रहती है। कल आप लोग सुन रहे थे भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रकट हो गए, परसों बात कितनी सुंदर छवि है भगवान की, एक एक अंग का सुखदेव को स्वामी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं। भक्त की प्रार्थना से भगवान प्रकट हो गए, चाहते थे कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो, हमसे कुछ बात करें, हमको सहारा दें, उपाय बताएं, तो श्री भगवान प्रकट हो गए और बातचीत करने लगे, उपाय बताए, उस उपाय के अनुसार भगवान बोल रहे थे ये उपाय करो ये करो ये करो ये करो, बीच में एक्सीडेंट हो गया, पर्वत गिर गया, तो भगवान उदासीन नहीं है, वो तो सब जगह है ही, पर्वत के गिरने पर फिर तुरंत प्रकट हो गए, सबके थकावट को दर्द को सबके कटे छटे शरीर को ठीक कर दिए, कटे छटे शरीर को और जीवित भी कर दिए मरे हुए को। तो भगवान कभी उदासीन नहीं है, दूर नहीं है। कभी कभी मूर्ख लोग पूछा करते हैं हमारे जीवन में भगवान की क्या जरूरत है, ऐसा भी वे सोचते हैं कि भगवान को हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमेशा भय लगा रहेगा, हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भगवान को भुला दो, भगवान को भुला देना चाहिए, आराम से आदमी जिएगा, भगवान से डर लगता है, ऐसे लोग कहते हैं। और डर जिसको रहेगा वो क्या काम करेगा, हमसे कांपता रहेगा। तो भगवान को भुला देना यह भी संभव नहीं है, कोई भुला कैसे सकता है। बंगाल में कहावत है, एक व्यक्ति कह रहा था, एक कहावत है कि एक व्यक्ति सोचा पापी था तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि अब तो जमराज के हवाले जाना पड़ेगा, तो सोचा कि जमराज से बचने के लिए मैं उपाय करूंगा, अपने पूरे देह में पैर से लेकर के सिर आंख तक स्टूल पोत लूंगा, मल लगा लूंगा और इतनी दुर्गंध निकलेगी कि जमराज जी भाग जाएंगे, हमको नहीं पकड़ पाएंगे। तो जो नरक में सजा होने वाली है वो सजा तुम तो पहले अपने से ही स्वीकार कर रहे हो, फिर भी जमराज छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ दो चार सुअर लाएंगे, वे लोग सारे मल को खा जाएंगे और जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे, तो बच नहीं सकते किसी भी तरह से। भगवान को हटा दो, मत याद करो, आराम से खाओ पियो। और कुछ मूर्ख से यहां तक कहते हैं कि भगवान तो झगड़ा लगाता है, भगवान के कारण बहुत से झगड़े होते हैं, यह ग्रुप वह ग्रुप, तो बेटर है कि भगवान को छोड़ो। हम हॉलैंड में गए थे तो कुछ लोग ऐसे प्रयोग कर रहे थे एक शब्द का, किसी चीज को छोड़ना है, जैसे मान लीजिए किसी से कोई मतलब नहीं है, छोड़ना है किसी चीज को, तो कहते हैं उसको लात मारो, लात मारो, छोड़ो। लात मारो जब प्रयोग कर रहे थे तो मैं चकित हो गया, क्या लात मारने को कह रहे हैं लात मारो। और यहां भी लोग कहते हैं बहुत बुरे शब्द कहते, उसको गोली मारो, छोड़ो उसको गोली मारो, गोली मारो। तो भगवान जीवन में इतना आवश्यक है कि उनको कोई अपने जीवन से थोड़ा एक सेकंड के लिए भी और तीन भर भी दूर नहीं कर सकते। भगवान तो सबकी सृष्टि करके सबके हृदय में ही है, उनको दूर किया ही नहीं जा सकता है। अगर कोई दूर कर रहा है तो वो आत्मघाती माना गया, जैसे अपनी हत्या कोई कर रहा है। अपने को तो मार सकता नहीं, जीव मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान की याद नहीं करता है तो उसको आत्मघाती कहा गया। भगवान इतने आवश्यक, जरूरत इसकी है कि भगवान की लीलाओं की याद की जाए। भगवान इतना सुहृद है, दैत्य हो चाहे दानव हो, भगवान सबको जिलाए, क्योंकि सबके पिता हैं। भेद इधर से होता है, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो उसके अनुसार भगवान कभी कभी व्यवहार करते हैं, लेकिन मानने वाले को तो हमेशा लाभ ही लाभ है। यहीं पर दो पक्ष चल रहा है, अंततः होते होते समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन से जब अमृत उत्पन्न होगा तो असुर लोग लेकर के भाग चलेगा, भगवान के हाथ से छीनकर भाग चले, देवता रोने लगेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उपाय करूंगा। उस अमृत के लिए दैत्यों में झगड़ा हो गया, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। वो पी नहीं पाए, केवल झगड़ा करते रहे। अब तब तक तो एक स्त्री देखे तो वो भी पीना भूल गए, और इस ट्रिक से भगवान ने फिर अमृत ले लिया अपने हाथ में और अपने भक्तों को पिला करके इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी बड़ा समीक्षण दे रहे हैं, ये क्या हुआ, एक ही स्थान पर, एक ही टाइम पर, एक ही साधन से, एक ही पूंजी लगा करके देवता दानव कर्म किए, और एक को फल मिला और एक को नहीं मिला। हाँ नहीं मिला, ये तो निश्चित। क्यों नहीं मिला, लिखा गया स्पष्ट कि एक दल वासुदेव का भक्त था, दूसरा नहीं था, उस यही कारण था। क्योंकि समुद्र मंथन कोई क्या किया था, अगर विचार करके देखा जाए, यदि भगवान उसमें नहीं सहायता किए होते तो मंदराचल ही नहीं आ सकता था। ये सब मर गए थे, भगवान छोड़ दिए होते तो कौन इनका लाश मथता है, कौन मथता है। पर्वत डूब गया था, उसको पीठ पर धारण किए, और अभी वर्णन आ रहा है कि भगवान अजित स्वयं ही मथने लगे, स्वयं अपनी चारों भुजाओं से सर्पराज को पकड़ करके और लगे मथने, तब जाकर के विष उत्पन्न हुआ या अमृत उत्पन्न हुआ। देखा जाए तो भगवान मथे हैं वास्तव में, इसी में कुछ है नहीं। जैसे गिरिराज श्री कृष्ण उठाए थे गोवर्धन, न कि लाठी लगाए हुए गोप उठाए थे, अपनी अपनी लाठी वो लोग लगाए थे, स्नेह था भगवान के प्रति, हम भी इसको आराम दें, इस लड़के को आराम दें, आराम दें, लेकिन वो सब सोचना बेकार था। भगवान उठाए थे, तो समुद्र मंथन भी भगवान हरि ने किया, कोई कुछ नहीं किया। और जब अमृत उत्पन्न हुआ तो भगवान को थोड़ा भोग भी नहीं लगाए कि एक गिलास दे दे, भगवान कहले तो दी अब वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। वहां पर तो बड़े होशियार है, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। भगवान का नाम जपने में आलसी, अच्छा करेंगे कल करेंगे देखेंगे, तो अब भोजन तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार, ठीक राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, यही दैत्य लोग थे। जब अमृत उत्पन्न हुआ तो ये धैर्य नहीं रहा कि थोड़ा भगवान को देना चाहिए, पूछना चाहिए, चाहे बासुकी नाग भी पिएंगे, बेचारे मर रहे हैं, उनको लपेटा गया है, देवता भी परिश्रम किए, वो छीन करके भाग चले तो आपस में भी छीना झपटी हो गई। मैं पहल अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, कोई कोई कहते थे तू केवल खड़ा था, कुछ नहीं जोर लगा रहा है, सिर्फ बाप बाप में मर गया, पहले मुझे पीने दो, पहले मुझे पीने दो, और वो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, सब में झगड़ा हो रहा था। मैं जोर लगाया ज्यादा, मैं काम किया हूं, मैं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, वो कहता था तू नहीं, पहले मैं, पहले मैं। इसी बीच में भगवान परम चतुर आ गए सामने, अब पियो पियो तुम लोग, हुआ झगड़े में ही रह गए, बाद में स्त्री के रूप में फंस गए, और स्त्री ने ऐसा कपट किया कि सामने दिखा करके अमृत कलश, सोने का कलश दिखा रही है और पिला रही है देवताओं को, और फिर भी नहीं रोक पाए। भगवान से छीन कर भाग सकते थे, देवताओं से भाग सकते थे, लेकिन स्त्री से अब विवाद करना भी इनको मुश्किल हो गया। यही दैत्यों का स्वभाव है, भाई से झगड़ा कर लेंगे, बाप से झगड़ा कर लेंगे, गुरु से, सब से, लेकिन क्या मजाल की बीवी से झगड़ा कर ले। इस संसार में देखा जा सकता है, बल्कि अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट कमाई को स्त्री के हाथ में जबरदस्ती दे दिए लोग। वो कह रहे थे कि मैं नहीं बाकी हूं, मैं नहीं जानती हूं, मैं सर्विस नहीं की हूं, किसी को ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, कोई हमको डांटेगा मारेगा, नहीं नहीं कोई कुछ नहीं करेगा। किसी के हाथ में अमृत कलश था तो उसे छीन करके दूसरे ने दे दिया, दो, अब क्या नहीं समझते हो, क्या ये स्त्री कपटी हो सकती है, हम लोग नहीं समझे हैं, हम लोग क्या विद्वान नहीं है। वो समझ रहे थे कि मोहिनी मजाक कर रही है, और भगवान मजाक नहीं कर रहे थे, वो जो कह रहे थे यही करेंगे, और ये लोग समझ रहे थे कि मजाक परिहास कर रही है, परिहास कर रही है, तो जबरदस्ती कलश छीन करके दे दी। और जब ले ली अपने हाथ में तो कहती है यदि हमसे कोई भूल हो जाए, किसी को ज्यादा मिले कम मिले, किसी को न मिले, तो आप लोगों को यदि स्वीकार हो तब तो मैं बांटूंगी, नहीं तो अपना लीजिए, ये सब बांट करके पी लीजिए। आई इसकी उदासीनता देख करके, और दैत्य लोग तो प्रत्येक दैत्य यही सोचता था कि भले पीने को मिले या न मिले, यह हमारी वाइफ बन जाए, इतना ही काफी है। इसी के लिए सब सब उसके अनुकूल थे, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जो और भगवान वाइफ बनने वाले थे। देहात में ऐसी घटनाएं घटती है, किसी लड़के को लड़की के रूप में सजा करके उनसे विवाह ठीक किया गया, और विवाह के 5 मिनट पहले वो लड़का भाग गया, मतलब लड़की लड़की के रूप में था। इसी घटनाएं हमने सुना है बिल्कुल निकट। ये भगवान की लीला है, और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल न्याय है वास्तव में। अब जब सुनेंगे पढ़ेंगे इस प्रसंग को, तो उन्होंने दैत्यों के साथ जो कुछ किया वो वास्तव में वही करना चाहिए किसी को, अन्यथा भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के क्यों भागे। जब देवता मथ रहे हैं तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि भगवान पहले से योजना बनाए थे कि दैत्यों को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके करने के अनुसार ही योजना बनाए थे। अगर वे नहीं हाथ से लिए होते भगवान धन्वंतरी के, तो भगवान ऐसा नहीं करते कि उनको नहीं देते, पर उन्होंने रास्ता खोल दिया अपने आप। तो इस तरह ये भगवान की लीला, यही मंथन कर रहे हैं। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं तथा सुराना विशदा सुरेण रूपेण तेसाम बलवीर जमीरयन उद्दीपयन देव गणाश्च विष्णु दैवेन नागेन्द्र मबोध रूपः। जब श्री भगवान ने देखा इतना मथने के बाद भी अमृत नहीं निकल रहा है और लोग थकने लगे, दैत्य और देवता सब थकने लगे, पटाने लगे, मतलब शिथिल होने लगे, यहां तक कि अब लगता था कि वासुकी मर जाएगा खींचने से, नुकीले पत्थरों पर चट्टानों से उनका शरीर रगड़ा जा रहा था, तो वो तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो लगा कि अब मर ही जाएंगे। तब भगवान क्या कर रहे हैं, असुरों में रजोगुण के रूप में आसुर भाव से प्रवेश किए, सब में उनका बल बढ़ाए, और देवताओं में सात्विकी शक्ति सत्गुण से प्रवेश किए, उनका बल बढ़ाए, बल वीर मीरयन बढ़ाए, देवताओं का बल बढ़ाए, और नागेंद्र में सर्पराज वासुकी में अबोध के रूप में प्रवेश किए, निद्रा के रूप में, जिससे उनको दर्द का अनुभव न हो। जैसे ऑपरेशन किया जाता है, मान लीजिए किसी का पेट का ऑपरेशन किया जाए, कहीं कुछ ऑपरेशन करना हो तो पहले बेहोश करते हैं ना, तो बेहोश होने से आराम से आदमी करा लेता है, अगर जागृत हो, संवेदना हो, सेंसेशन हो और काटा जाए तो छटपटा कर मर जाएगा, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वैसे ही अगर वासुकी जगे रह गए होते तो बीच में ही खत्म हो गए होते, लेकिन भगवान उनके भीतर निद्रा रूप से प्रवेश किए, अबोध रूपा, और उनकी शक्ति को बढ़ाए, पर्वत में प्रवेश किए, पर्वत को इतना जोर से खींचा जा रहा था कई वर्षों से, यदि उसमें दृढ़ता के रूप में नहीं प्रवेश किए होते तो पर्वत बिखर गया होता है, एक एक चट्टान अलग हो गई होती, लेकिन उसको बांधे रहे दाढ़े के रूप में, दृढ़ता के रूप में, तो असुरों में आसुर भाव से रजोगुण के रूप में प्रवेश करके उनके बल और वीर्य को बढ़ा रहे थे, और देवताओं को उद्दीपित कर रहे थे उनमें सत्गुण के रूप में, तो देवताओं का भी उत्साह बढ़ा हुआ था और दैत्यों का भी भगवान के प्रवेश करने से, और वासुकी नाग स्वस्थ रहे। ऊपर युगेंद्रम गिरिराजवान, किस तरह से श्री भगवान ही मथ रहे हैं समुद्र को, इसको सुखदेव जी कहते हैं, उपरी अगेंद्रम गिरिरा दिवान्य, और पर्वत जब मथा जा रहा था तो पर्वत उछल रहा था, ऊपर उठ जा रहा था, दूध से उस जल से ऊपर उठ जा रहा था, तब भगवान ने उसके ऊपर एक पर्वत के रूप में उसको दबा करके रखा, बैलेंस बना करके, तो नीचे भी थे कच्छप के रूप में और ऊपर भी पर्वत के रूप में थे, सहस्र बाहु हजारों बाहें भगवान की थी, और पर्वत के समान एक द्वितीय पर्वत के समान वे उस पर्वत को दबा करके थे, खड़े थे वे, भगवान ने मंदराचल के एक शिखर को पकड़ करके खड़े थे, बाहें फैली थी, और उस समय भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र आदि आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे, भगवान की कीर्ति गा रहे थे, जब इस तरह से खड़े थे पर्वत को दबा करके, नीचे कच्छप के रूप में, और पर्वत में दृढ़ता के रूप से प्रवेश किए थे, असुरों में रजोगुण के रूप में और देवताओं में सत्गुण के रूप में, सर्पराज वासुकी में निद्रा के रूप में, इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा था, तब पर्वत बिखरा नहीं, वासुकी मरे नहीं, और दैत्यों में शांति क्लांति नहीं रही, और देवता भी उत्साह में थे, इस तरह समुद्र मंथन चल रहा था, तो ब्रह्मा भव इंद्र मुख्य ही, जिन देवताओं में ब्रह्मा जी और भगवान शिव और इंद्र मुख्य हैं, ऐसे सिद्धों द्वारा, देवताओं द्वारा सुमन की अभिवृष्टि हो रही थी, भगवान पर फूल बरसाए जा रहे थे, यह उत्सव चल रहा था, भगवान मच रहे थे, सब तरह से भगवान थे, तो देवताओं में उत्सव चल रहा था। इसका एक अर्थ है कि जो ब्रह्मा शिव और इंद्र से भी मुख्य हैं, बड़े हैं, वे भगवान के पार्षद वैकुंठ से आकर के भगवान पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, भगवत भक्तगण फूलों की वर्षा कर रहे थे, अथवा इंद्र जो मथने में लगे थे वे इधर मथ भी रहे थे और काय देह रूप से दूसरे रूप से भगवान पर फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। ये अर्थ है, स्तुति कर रहे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे, बाजे बजा रहे थे, समुद्र मंथन चल रहा है। इस तरह भगवान की एक लीला है और भक्तजन उसको गा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। समुद्र मंथन एक आनंद की लीला है, वास्तव में सब और भगवान है, इसीलिए उनको विष्णु कहा गया पिछले श्लोक में, जो सब जगह है, सब में प्रवेश किए हैं, उनको विष्णु कहते हैं। पर्वत में मंदराचल पर्वत में प्रवेश किए हैं उसको सुदृढ़ रखने के लिए, वासुकी नाग में प्रवेश किए हैं, असुरों में प्रवेश किए हैं, देवताओं में प्रवेश किए हैं, पर्वत के नीचे कच्छप के रूप में है, ऊपर अपने स्वरूप से विराज रहे हैं एक भारी पर्वत के समान। तो सब और भगवान हैं, और इसी इस रहस्य को सर्वज्ञ ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र आदि समझ गए, आगे इसीलिए वो लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और फूल की वर्षा कर रहे हैं। सुमनो भी वृष्ट, भगवान को आच्छादित कर दिए फूल वर्षा कर, ऊपर जो भगवान थे उन ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे विमानों से। तो सब और फूल बिखरे हुए थे, और इधर अब इतना करने के बाद भी जब अमृत उत्पन्न नहीं हुआ तब भगवान लगेंगे स्वयं। उसके पहले एक श्लोक कह रहे हैं, ऊपर यधश्चात्मनि गोत्र नेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममंथुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणाच्छभित नक्र चक्रम। ऊपरी अध, भगवान ऊपर हैं पर्वत के, नीचे हैं, नीचे में तो कच्छप रूप से ऊपर एक पर्वत के आकार में हैं, और आत्मनी, आत्मनी का अर्थ है कि असुरों में और देवताओं में, रजोगुण तमोगुण के रूप में, और गोत्र नेत्रयोः, गोत्र मन पर्वत में और नेत्र वासुकी में रसी में। परेण ते प्राविशता, परेण परम ईश्वर परमात्मा भगवान विष्णु प्रवेश किए थे सब में, और प्रवेश करके समेधिता सबका उत्साह बढ़ा रहे थे, बल बढ़ा रहे थे। और ममन थुरब्दिम तरसा मदोत्कटा, देवता और दानो मदोत्कटा परम उत्साह में, परम प्रयत्न के साथ उस समुद्र को मथ रहे थे, उस महाअद्री से, महापर्वत से। उस समय उस समुद्र के जितने भी नक्र थे, घड़ियाल थे, मगर्स थे, तिमिंगल, सर्प, हाथी आदि जल के, वे सब क्षोभित हुए, घबरा गए। वास्तव में किसी की हत्या नहीं हुई, पर्वत चल रहा था तो जल के वेग से सब दूर हो गए। कुछ लोग तो तट पर आकर के तमाशा देखने लगे, जलचर जो थे घबरा गई, ये हाय बात, कौन सी विपत्ति आई, कहां से आ गई, ये क्या होने लगा। इतना जल जोर से आंदोलित हो रहा था कि वे सब घबरा गए, सब बाहर आ गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अब यह वर्णन है कि असुरों को साधन काल में भी कष्ट ही कष्ट हुआ, और सिद्धि काल में तो फल बिल्कुल मुअसर नहीं हुआ, फल तो मिला ही नहीं, और साधन काल में भी महाकष्ट हुआ। अहिंद्र साहस्र कठोर दृङ्मुख श्वासाग्नि धूमा हत वर्चसो सुरा पौलोम कालेय बलिल्वलादयो दावाग्नि दग्धा सरलाइवा भवन। यहां बताए जा रहे थे तत्र भगवत विमुखा नाम, जो भगवान से विमुख रहते हैं जो असुर, साधन दशा में भी उन्हें अति कष्ट हुआ, कष्ट से निवृत्ति नहीं थी। अहिंद्र साहस्र कठोर दृङ्मुख श्वासाग्नि धूमा हत वर्चस, अहिंद्रस्य सर्पों में श्रेष्ठ, श्री वासुकी जी के सहस्रों आंखों से और मुख सहस्रों आंखें थी, मुख थे और नासिका श्वास चल रहा था। तेभ्यो आंखों से, मुख से और सांस से निर्गताभ्याम अग्निधूमाभ्याम निकले हुए आग और धुआं से आहतम सम्यक एवं हतम वर्चो जैसा दैत्यों का सारा जीत जाट खत्म हो गया, झुलस गए, उनका शरीर झुलस गया, धुआं लग रहा था और आग आंच लग रही थी, वो निकट में लगे थे ना मुख के तरफ, तो वो झुलस रहे थे। यहां तक इतनी आंच निकल रही थी, इतने धुआं निकल रहा था कि देवांश तत् श्वास शिखा हत प्रभाव, देवता जो दूसरे पक्ष में लग थे वे भी वासुकी नाग के श्वास की शिखा से, शिखा मतलब अंतिम छोर से, वो लोग भी हतप्रभ हो गए थे। इन लोगों के समान झुलसे नहीं थे लेकिन हतप्रभ हो गए थे, उनकी भी चमक दमक खत्म हो गई थी। तब बताइए जब देवता भी हतप्रभ हो गए थे तब दैत्य कितना झुलसे होंगे, वो तो निकट में थे। जो वासुकी नाग के शिखा के श्वास से देवता भी धूमिल हो गए थे तो इनकी तो दशा ही बिगड़ गई थी। धूम्रम बरसरग बरकम चुकानना, देवताओं के अंबर कपड़े और सुंदर सुंदर मालाएं और जैकेट और चेहरा सब धूमिल हो धूम्र हो गए थे, सब जगह धुआं छा गया था देवताओं पर, और इनकी जो हालत हो रही थी वो तो वर्णन से परे है। दैत्य जो झुलस रहे थे लेकिन अब कितना भी झुलसे भगवान से कह नहीं सकते थे कि गलती हुई हम पूछ के तरफ रहेंगे, अब वो कह नहीं सकते थे, इतना मान में थे कि अब झुकने वाले नहीं थे, भले मर जाए कुछ भी हो तो कह देते कि अल्टरनेटिव अब बदला जाए, कह सकते थे ना कि अब बदला जाए, आप लोग मुख की तरफ हो या हम लोग पूछ की तरफ नहीं, फिर अब कैसे कहे, अपने से ही पहले विरुद्ध कहे थे, कष्ट हो रहा था। आनंद कुमला गया, जैकेट कपड़ा माला ये देवताओं के हुए, देवताओं के वस्त्र सब बिगड़ गए, काम चल रहा था ना, अब कोई वहां धनबाद में कोयलौरी में काम करे और सोचे कि कपड़ा गंदा न हो जहां कोयले का ही काम है तो कपड़ा गंदा होगा ही, देवताओं के कपड़े उनकी मालाएं उनके जैकेट वस्त्र सब गंदे हो गए, धूमिल हो गए धुआं से, और दैत्य तो वैसे झुलस गए थे जैसे सखुआ के वृक्ष दवाग्नि में झुलस कर काले हो गए, इनका तो शरीर ही जल गया था, इनका तो वस्त्र और माला ये सब हतप्रभ हो गया है, धूमिल हो गया है, लेकिन दैत्यों का सब जल गया था। सुखदेव गोस्वामी एक दावाग्नि दग्धा सरला युवा भवन, कौन कौन दग्ध हो चुके थे ये सब मुख के बिल्कुल निकट थे, पौलोम कालके बलि महाराज इलवल आदि ये सब असुरों के जो हेड लोग थे ते बिल्कुल मुख के पास दिखा रहे थे कि हम शान के साथ रहें, तो सब झुलस रहे थे। जो इतना मंथन चला लेकिन फिर भी सुधा नहीं उत्पन्न हुई, अमृत उत्पन्न नहीं हुआ, तो मथ्यमाना तथा सिंधु देवासुर बरुथ पै जदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा जितह स्वयं। जब देवताओं और दानवों के द्वारा इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा था पर जदा सुधा न जाए तो जब अमृत उत्पन्न नहीं हुआ तब स्वयं अजितह निर्ममंथा, स्वयं भगवान अजित लगे देवताओं की तरफ, और सब जगह तो प्रवेश किए ही थे लेकिन भगवान जब अजित खड़े होते देवताओं की तरफ से, देवताओं की तरफ से होकर के और भगवान जोर से खींचना चालू किए। इसका अर्थ भगवान यह दिखा रहे हैं कि मंथन पर्याप्त नहीं चल रहा है, ऐसे अमृत उत्पन्न नहीं होगा, उनके मथने से होने वाला था नहीं, तो इसीलिए निर्ममन था, जीत स्वयं स्वयं अजित भगवान लग गए। उस शोभा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, मेघ श्याम कनक परिधि करण विद्योत मूर्धनी विद्युत मूर्धनि भ्राजत बिलुलित कछह श्रगधरो रक्त नेत्र जैत्रैर दोर्भि जगद भय दैर दंड शूकं गृहीत्वा मथनं मथना प्रतिगिरिवा शोभताथो धृताद्रिः। धृताद्रिः पर्वत को धारण किए हुए अर्थात सांप को पकड़ करके उसके द्वारा भगवान मंथन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान वैकुंठ अजित भगवान। तो कैसे हैं? मेघ श्याम, भगवान मेघ के समान सांवले हैं, मेघ श्याम श्याम। कनक परिधि, परिधि का अर्थ परिधान वस्त्र, भगवान का वस्त्र कैसा है? कनक के समान पीत वर्ण, कनक अर्थात सोना के समान, सोना जैसा पीत वर्ण वस्त्र। स्वयं श्याम है पर कनक परिधि परिधान वस्त्र पीला है, और कर्ण विद्युत विद्युत, और कानों में दोनों कानों में बिजलियां हैं, कुंडल जो है वे उनकी उनको सीधे बिजली कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और कैसी बिजली? विद्युत बिजली, विद्युत विद्युत, अस्थिर विद्युत, अस्थिर मत, ये जो प्रसिद्ध बिजली है तो चक से चमकती है खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों कानों में जो कुंडल है भगवान के वो बिल्कुल अस्थिर चमकते हुए विद्युत है, विद्युत विद्युत, बिजली जैसे चमक रहे हैं कुंडल, और लगातार है। मूर्धनी भ्राजत बिलुलित कचह, और सिर पर बिलुलित कचह घुंघराले केश हैं भगवान, घुंघराले केश मुकुट से बाहर लटके हुए हैं, अथवा हो सकता है भगवान मुकुट ना लगाए हो। कभी कभी भगवान ऐसे एक कपड़ा बांध लेते हैं अपने केश में, तो ऊपर भी दिखाई पड़ता है केश और नीचे भी दिखाई पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिलुलित कच्छ मूर्धनी सिर पर श्रग धरो, श्री भगवान माला लगाए थे, वनमाला अथवा रत्नमाला, रक्त नेत्र, और भगवान के नेत्र गुलाबी हैं, लाल रंग के हैं। जैत्रेय दोर्भि जगत भयदेहि दंड शूकं गृहीत्वा, भगवान अपनी चारों भुजाओं से सर्पराज वासुकी को पकड़े थे। जैत्रेय जो भुजाएं सर्वत्र विजयी होती हैं, आज तक भगवान की भुजाओं की पराजय नहीं हुई, बल्कि इन भुजाओं का जो आश्रय लेता है उसकी सर्वत्र विजय होती है, इसीलिए उसको जैत्र कहते हैं, जय देने वाली भुजाएं। उन जय देने वाली भुजाओं से भगवान दंड शूकं गृहीत्वा उस सर्प को पकड़ करके मंथन कर रहे हैं। और भुजा की विशेषता और भी है, जगद अभय दय, संपूर्ण विश्व को अभय देने वाली, उनका भय दूर करने वाली ये भुजाएं हैं। ऐसी भुजाओं से सर्पराज वासुकी को गृहीत्वा पकड़कर मथना, उस मंथन दंड से पर्वत से मथनम मथ रहे हैं समुद्र को, तो उस सोने के पर्वत के पास खड़े हैं, तो ये स्वयं ही एक नील मणि पर्वत की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, सांवला पर्वत खड़ा है प्रतिगिरी स्वर्ण पर्वत के पास। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से याद कर रहे हैं, मंदराचल पीत वर्ण सोने का पहाड़ है, और श्री भगवान इंद्र नील मणि के पर्वत जैसे सुशोभित हो रहे हैं। प्रतिगिरी इव अशोभत धृताद्रि, उस पर्वत को धारण किए हैं मथना धृताद्रि, वासुकी नाग को पकड़े हैं, पर्वत खींच रहे हैं, उस पर्वत के पास बहुत सुंदर लग रहे हैं। अशोभत उस पीत पर्वत के पास, कनक पर्वत के पास नीलमणि पर्वत की तरह भगवान शोभित हो रहे हैं, इस तरह मथने लगे। जब भगवान ने मथना चालू किया तो देवताओं और दानवों का और उत्साह बढ़ा। जब जोर से मथानी चल रही थी तब तो एकाएक हलाहल विष उत्पन्न हुआ मथने से। मथा जा रहा है अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले विष निकला। निर्मथ्यमानाद उदधे रभुद विषम, महोल बड़म हाल हलाव मग्रतः, संभ्रांत मीनोन मकरा ही कच्छपात, तिमी दीपग्राह तिमिंगला कुलात। निर्मथ्यमानाद, समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र के दृश्य को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। जब भगवान अजित ने मथना चालू किया देवताओं और दैत्यों के साथ, तो समुद्र में रहने वाले मीन और उन मकर, बड़े बड़े मगर, सर्प और कच्छप, ये सब संभ्रांत हो गए, व्याकुल हो गए, भागने लगे इधर उधर। और तिमी दीपक ग्रह तिमिंगला कुलात, और उस समुद्र में तिमी और हाथी, ग्राह और तिमिंगल आदि व्याकुल हो गए। उन्हें सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे सब चालू हो गया, क्यों हो रहा है। इस तरह से जब मथा जा रहा था समुद्र, भगवान मथ रहे थे, तो उदधे अग्रतः सबसे पहले समुद्र से हाल हलाहुवम, हलाहल नामक महाउल्बड़म विषम अभूत, महाभयावह विष उत्पन्न हुआ। तो प्रश्न होगा कि महा वो कहां उत्पन्न हुआ, एक जगह पर कहां, तो एक जगह पर नहीं, पूरे समुद्र में ही विष उत्पन्न हो गया। तदुग्र बेगम दिश दिश पर्यत हो, वह विष उग्र बेग वाला था, महाभयानक पराक्रम था उसका, तो महामारक था और बहुत जोर से फैल रहा था। दिशी दिशी ऊपरी यध, वो दिशा विदिशा अर्थात समस्त दिशाओं में फैलने लगा, समुद्र के सरफेस से चारों तरफ फैलने लगा। ऊपरी यध, ऊपर भी नीचे भी, विसर्पत चारों ओर फैलने लगा, उत्सर्पत ऊपर फैलने लगा, असह्यम उसको सह पाना कठिन था, उस विष से मरना निश्चित था, और अप्रति उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उसको काउंटरैक्ट नहीं किया जा सकता था, किसी दूसरे चीज से उस विष को दबा दिया जाए। एक तो ये उसका स्वभाव था कि उस वो लग जाने पर मरना निश्चित था, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और ऊपर नीचे दिशा विदिशा में सब और विष फैल रहा था। तो भीता प्रजा दुद्रु रंग ईश्वरा, हे महाराज परीक्षित, अब प्रजा का अर्थ है वहां जो दैत्य और देवता मथ रहे थे, वे सब डर गए और चले भाग मथना उथना छोड़कर। श्रेष्ठवरा ईश्वर के साथ भागे, ईश्वर माने अजित भगवान भी, वो अपने भक्त शिव जी को जस देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भी कहा भागो भागो, तो उनके देखा था कि सब भागे। विष उत्पन्न हुआ, इतना भयावह आ रहा था, जब उस शरीर पर किसी के सटता तो शरीर में सीधे आग लग रही थी, ऐसा नहीं था कि पीने के बाद कोई मरेगा, आग लग जाती थी। तो जरत सकल सुरवृंद, रामचरितमानस में कहा गया है कि सारे देवता जल रहे थे, तो भगवान शिव ने विष पान किया, कौन ऐसा दयालु है भगवान शिव के समान। तो ये अब विष उत्पन्न हुआ तो देवता लोग सब भाग चले। भीता प्रजा दुद्रुबु, डरी हुई प्रजा अर्थात देवता और दानव, दुद्रुबु सब भागे, सब भागे। वास्तव में उनको चाहिए था कि ईश्वर की शरण में, वहीं पर ईश्वर थे, जो मंदराचल गिरने से बचाए थे, पुनर्जीवन दिए थे, सब कर रहे हैं, तो रक्षा तो कर सकते थे। लेकिन वही प्रभु ऐसा नाटक किए भगवान शिव को जश देने के लिए, भागो भागो कोई नहीं बचाएगा, सदा शिव की शरण में, सदा शिव की शरण में सब लोग जाओ चलें। तो अरक्ष मारा शरणम सदा शिवम, अरक्ष मारा, भगवान अजित रक्षा नहीं कर रहे थे बल्कि वे भी भाग रहे थे। कहां भागे? तो शरणम सदा शिवम, सदा शिव की शरण में भागे, भगवान शिव की शरण में भागे। भगवान विष्णु के, कृष्ण के समस्त भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान शिव। उनको जस देने के लिए कि वे संसार की रक्षक हैं, रक्षा किए इस महाउल्बण विष से, रक्षा किए, ये जस देना चाहते थे, इसीलिए भगवान स्वयं रक्षा नहीं किए, शिव जी के पास प्रेरणा करके भेजे सबको, स्वयं भी गए। अरक्ष मारा तत्रत्येन अपि अजितेन इति शेष, अजित के द्वारा भी रक्षित नहीं हुए। श्री भगवान रक्षा कर सकते थे लेकिन वे लोग उनसे प्रार्थना नहीं किए और भगवान ने रक्षा नहीं किया। तो सदा शिवम शरणम दुद्रुभु, गए न कह करके भागे कह रहे सुखदेव गोस्वामी, सदा शिव की शरण में दुद्रुभु भागे जोर से। तो यहां से मैं जरा पढ़ूंगा, व्याख्या करने में बहुत समय मिलेगा, शिव जी विषपान कैसे किए वो प्रसंग में कहूंगा श्लोकों से, फिर अभी अनुवाद पढ़ रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब कथाएं ही हैं। देवताओं ने शिव जी को अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर तीनों लोकों को मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए देखा। मुक्ति की कामना करने वाले भक्त मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे, देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। श्री प्रजापति उच्च प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उन्हीं उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि आप इनके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनकी मुक्ति के भी आप ही कारण हैं, अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, और जब आप सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं तो उस समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम धारण कर लेते हैं। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाश अचिंत ब्रह्म हैं जो और परब्रह्म हैं। आप इस दृश्य जगत में विभिन्न शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि, प्राण, इंद्रिय, पांच तत्व, तीन गुणों तथा बृहत तत्व के मूल कारण है। आप नित्य काल संकल्प तथा सत्य और रीत कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षर अ उ म, औ तथा म अर्थात ओम शब्द के आश्रय हैं। हे समस्त लोकों के पिता, विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल है, आप निखिल देव रूप हैं और नित्य काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं और जल का स्वामी वरुण आपकी जीभ है। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है, आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं, चंद्रदेव आपका मन है, उच्चतर लोक स्वर्ग आपका सिर है। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं, सारी औषधियां लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं, गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के सात कोष हैं और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। हे प्रभु, पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके पांच मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं, आप परम लक्ष्य परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष स्थित हैं। ट्रैवल नेपकिन के में रखा है। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म से में दिखती है, जिससे नाना प्रकार के की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व तथा रज तथा तम आपके तीन नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे निकले हैं, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा। हे गिरीश, चूंकि निराकार ब्रह्म तेज सत्व रज तथा तम गुणों से परे है, अतः इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न यही जान सकते हैं कि वह कहां है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है, तो सारी सृष्टि जल कर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष विनष्ट किए जाने को कैसे जाना जा सकता है। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय में नहीं बन सकते। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति निरंतर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरण करते देखते हैं, तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं। अथवा जब वे आपको श्मशान में घूमते हुए देखते हैं, तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत निरसंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज हैं, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। चूंकि आपको सही रूप से नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं, अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाने वाली है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं कि इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ये देवता लोग भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है, लेकिन इसको कहने पर मैं इस प्रसंग को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए यहां पढ़ा। भगवान शिव मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। अब भगवान शिव ने जो विषपान किया, वो प्रसंग मैं ले रहा हूं। श्री सुकौवाच तद्वीक्ष व्यसनम तासाम कृपया भृष्पीडितः सर्वभूत सुहृदेवः इदमाह सतिं प्रियाम्। समस्त देवताओं के और प्रजाओं के इस दुख को भगवान शिव ने देखा। सुखदेव जी कहते हैं तद्विक्ष व्यसनम तासाम, उन्होंने देखा इनके दुख को, तो कृपया भृश पीड़ित, भगवान शिव कृपा से द्रवित हो गए। पीड़ित का अर्थ होता है उनके दिल में, उनके हृदय में बहुत दुख लगा, सब छटपटा रहे थे, जीने की आशा से भगवान के शरण में आए हैं। तो देख देख करके भगवान शिव बड़े द्रवित हुए, पीड़ित हुए, क्योंकि सर्वभूत सुहृद देवा, भगवान शिव समस्त प्राणियों के सहज सुहृद हैं, इनका हित करने वाले। सर्वभूत सुहृद देवा और परम पूज्य हैं, इद माह सतीम प्रियाम, अपनी प्रिया अपनी पत्नी सती जी से वे इस प्रकार बोले, प्राणियों के दुख से द्रवित होकर के बोले। श्री शिव यह वास्तव में श्री भगवान वाच है, पाठ श्री भगवान वाच। अहो बत भवाने तद प्रजानाम पश्य वैशसम शिरोद मथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। भगवान ने कहा हे प्रिय भवानी, जरा देखो प्रजा के इस दुख को, इस वैशस को देखो। प्रजानाम एतत् वैशसम पश्य, देखो इनके दुख को, यह दुख है, यह संकट उपस्थित हुआ है। शिरोद मथनद भूता कालकूटाद उपस्थित, शिर समुद्र मथा गया और उसके मथने से कालकूट विष उत्पन्न हुआ है, उस विष से यह संकट उपस्थित हुआ है। तो आसम प्राण परेप्सुनाम विधेयम अभयम ही में, ये सभी जीने की लालसा कर रहे हैं, इनके प्राण पर संकट है, तो इनको अभय दान देना, इनका संकट दूर करना, ये मेरा कर्तव्य है। एतावान ही प्रभोर अर्थो जब दीन परिपालनम, भगवान शिव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभु है समर्थ पुरुष का यही कर्तव्य है वह दीन परिपालनम, दीन दुखी जीवों का पालन करें, उनका दुख दूर करें। एतावान अर्थ, अगर समर्थ व्यक्ति है तो उसका इतना ही अर्थ है, अर्थ का अर्थ सहज कर्तव्य अथवा जीवन का ध्येय यही है। जद दीन परिपालन, दीन दुखी प्राणियों को सहारा देना, पालन करना, यही समर्थ पुरुषों का परम कर्तव्य है। भगवान शिव अपनी पत्नी से बात इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान शिव के सामर्थ्य को न जान करके सती जी मना करें कि नहीं नहीं मत कीजिए, इस डर हमें बहुत डर लग रहा है, आज कोई विष पीने चले तो कोई पत्नी स्वीकार करेगी कि विष पीजिए? नहीं स्वीकार करो, क्योंकि वो पति समर्थ नहीं है, लेकिन भगवान शिव परम समर्थ है। पहले तो ये सोचे कि इसकी अनुज्ञा लेनी चाहिए, इसीलिए बात कर रहे हैं कि प्रजा दुख में है और जो समर्थ व्यक्ति है उसका कर्तव्य है कि प्रजा का दुख दूर किया जाए, तो अनुज्ञा लेने के लिए कि पार्वती सती हमको कहे ठीक है। भगवान शिव को शंका थी कि हो सकता है हमारा प्रभाव न जान करके एकाएक मना कर दे कि नहीं पीना है, और जब होम मिनिस्टर ही मना कर दिया तो अब कैसे पी सकते हैं। पत्नी को होम मिनिस्टर कहते हैं, घर की मंत्री वही है। कभी कभी लोग कहते हैं होम मिनिस्टर से पूछ लो फिर ये होगा कि नहीं, अब तो पत्नी कहेगी तब ना। भाई बहुत जीवन में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं भगवान शिव, तो पत्नी से पूछना जरूरी है, इसीलिए दिखा रहे हैं। वो पार्वती जी अनुमोदन करेंगे, ठीक है, इनकी रक्षा कीजिए। आसाम प्राण परिप्सु नाम विधेयम अभयम ही में, प्राण रक्षा के लिए व्यग्र इस जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, विधेय है, मैं करूंगा। एतावान ही प्रभो रथो जब दिन परिपालन, समर्थ पुरुषों का यही कर्तव्य है कि वे दुखी जीवों का पालन करें। प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरै, बद्ध बैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममाया। देखो प्रिय, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी आत्म माया, परमात्मा भगवान कृष्ण की माया से मोहित है, भगवान की माया से बेचारे भ्रमित हैं, अज्ञ बने हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव ये कहना चाहते हैं कि जीवों का कोई दोष नहीं है, जब माया शक्ति ही भ्रमित की है, भ्रम में डाली है, तो इनका कल्याण करना है। पर माता सती ने कहा कि अरे आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बैर है, क्या है आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं। कहते हाँ, भगवान की माया से मोहित हैं बेचारे, बद्ध बैरेषु, एक दूसरे से बैर बांधे हुए हैं। लेकिन ऐसे प्राणियों पर भी जब कोई कृपा करता है तो उनसह कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। ऐसे प्राणियों पर भी कोई कृपा करता है तो कृपा करने वाले पुरुष पर, व्यक्ति पर भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना यही जीवन का ध्येय है, यही परम लक्ष्य है। अतः इन प्राणियों की मदद करनी चाहिए, भगवान शिव सिद्धांत बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ गलत सुन लिए हैं बहुत से भक्त, इस सिद्धांत को सुनिए भगवान के शिव के मुख से। ये कहते हैं कि संसार में मायाबद्ध जीव है, माया में फंसे हुए हैं, बेचारे को ज्ञान नहीं है और परस्पर एक दूसरे से बैर रखे हैं, झगड़ा करते हैं करते हैं। तो ऐसे प्राणियों की भी रक्षा साधु जन करते हैं। वो आगे से इसका संबंध है, प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधवः साधु क्षणभंगुरै। साधव जो भगवान के भक्त होते हैं, सज्जन होते हैं, वे इस क्षणभंगुर शरीर के द्वारा प्राणिनः पान्ति, वे जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारा धन, हमारी बुद्धि सब दिन नहीं रहेंगे, जाने वाला है, क्षणभंगुर है। कुछ ही काल के लिए जवानी रहती है, कुछ ही काल तक धन रहता है, धन भी पता नहीं रहता है कब चला जाएगा। और धन और जवानी की बात तो दूर रही, जीवन ही क्षणभंगुर है, शरीर चला जाता है। जब तक है तब से साधु जन प्राणिनः पान्ति, अन्य प्राणियों को पोषते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, दया करते हैं, भले वे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भगवान की माया से मोहित हैं। तो ऐसे प्राणियों पर पुंसा कृपयतो भद्रे, हे सुंदर स्वभाव वाली पार्वती, ऐसे प्राणियों पर जो कृपा करते हैं तो उन पर सर्वात्मा प्रियते हरि। सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान हरि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम सचराचर, और जिस व्यक्ति पर भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो चर और अचर के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। मैं उसी व्यक्ति पर खुश होता हूं जो जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रिय अहम, मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, प्रसन्नम भवान, प्रसन्नो भवान, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और वास्तविक बात है कि चर अचर सभी प्राणी उस पर प्रसन्न होते हैं जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? प्राणियों पर दया करने से, उनका उपकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कैसे प्राणी, उसके भी लक्षण भगवान बता रहे हैं कि आत्ममाया मोहितेशु बद्ध वैरेशु, जो आपस में बैर किए हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, माया ने उनके मति को भ्रम में डाल दिया है, अज्ञ है, ईश्वर को नहीं समझते हैं, एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझते हैं, दूसरे को सहारा नहीं देते हैं, एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। पर ऐसे प्राणियों पर भी जो व्यक्ति कृपा करता है, उनका उपकार करता है, तो उस पर भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। हरि का विशेषण भगवान शिव दे रहे हैं, सर्वात्मा, जो सबके आत्मा, सबके हृदय में है भगवान। यह मान करके भी सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में है। भगवान सबके हृदय में है तो सबका शरीर एक प्रकार से भगवान का मंदिर है, वहां भगवान रह रहे हैं। यह मान करके सभी प्राणी का सम्मान करना चाहिए और जहां तक हो सके हित करना चाहिए। भगवान शिव सदाचार की बात बोल रहे हैं कि जितने भी सज्जन हुए, बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने क्षणभंगुर शरीर के द्वारा प्राणियों की रक्षा किए हैं, करते हैं, यही उनका स्वभाव होता है। इस बात को देखते हैं कि हमारा सब कुछ कुछ ही दिन के लिए रहने वाला है। तो ये साधु साधव जो उच्च कॉन्शसनेस वाले व्यक्ति हैं, उनका यह विचार रहता है। तो वे अपने प्राण से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपने क्रियाकलापों से दूसरे का उपकार करते ही हैं, चाहे वो जैसे भी हो, सबका उपकार करते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से परोपकार करता है, दूसरे का हित करता है, तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचर, चर और अचर प्राणी भरे को सभी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तस्मादिदं गरम भुंजे प्रजानं स्वस्तिरस्तुमे, इसलिए मैं इस विष को पीऊंगा, इसी उपाय से मैं रक्षा कर सकता हूं। तस्मादिदं गरम विषम भुंजे, मैं इसको खाऊंगा पीऊंगा, प्रजानं स्वस्तिरस्तुमे, मुझसे प्रजा का कल्याण हो। अगर मैं इसमें निमित्त कारण बन रहा हूं कि मेरे चलते प्रजा सुखी रहे, जीवित रहे, सुख से खाए पिए सुखी रहे, तो मैं इस विष को पीऊंगा। मैं स्वस्ति रस्तु प्रजा, मतलब मुझसे स्वस्ति रहे, इसकी शोभन सत्ता रहे। सुअस्ति स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है शोभन सत्ता। शोभन सत्ता मतलब सभी सुख से जिए, किसी को कोई कष्ट ना हो, मैं इसके लिए विष पीऊंगा। भगवान ने कहा ये विष पीने को क्यों कहा? कहीं फेंकवा दिए होते, जमीन में गड़वा दिए होते है ना, कि विष को से विष को काउंटर किए होते। लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि यदि बाहर कहीं भी विष फेंका जाएगा तो सब जगह जीव है, जीव है, सर्वम जीवमयम जगत, सारा जगत जीवमय है, कोई ऐसा एक इंच भी जगह नहीं है जहां जीव ना हो। तो बाहर फेंका जाएगा तो अनेक जीव मरेंगे इस भयंकर विष से, वो बहुत दूर में फैलाता है। अगर भीतर पीता हूं, भीतर बिल्कुल कंठ के भीतर करता हूं, तो मेरे उदर में भी अनंत कोटि जीव है, वे मर जाएंगे। तो भगवान शिव उसको पिए लेकिन गले में ही पचा लिए। हम लोगों में शक्ति नहीं कि एक बूंद पानी भी गला में रख ले, या तो बाहर करेंगे या घुट जाएंगे पी जाएंगे, लेकिन वे अद्भुत समर्थ हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। कहते मैं पीऊंगा इस विष को। इतना निर्भय समुद्र व्यापी हलाहल कालकूट विष को पीने के लिए भगवान तैयार है। जब विचार करना चाहिए भगवान शिव की क्या महिमा है। थर्ड क्लास के जीव तुरंत शिव ब्रह्मा आदि कॉल, शिव ब्रह्मा आदि ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे है। जब जरूरत पड़ गई संसार में सभी प्राणियों की रक्षा के लिए तो भगवान शिव ने क्या किया है, ये इतिहास बता रहा है श्रीमद् भागवतम। तस्माद् इदम् गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्ति रस्तु में, मेरे से प्रजा का कल्याण हो हित हो इसलिए मैं इस विष को पीऊंगा। श्री सुकवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव पर कहते हैं, एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्व भावन तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव ज्ञानमोदत। एवं आमंत्र इस प्रकार से भवानी से अपनी पत्नी सती जी से मंत्रणा करके और भगवान शिव विश्व भावन भगवान विषम जगधुमारे भे विष पीना प्रारंभ। भगवान शिव के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विश्व भावना, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले, उद्भव करने वाले, विकास करने वाले, समृद्धि करने वाले भगवान शिव विष पीने के लिए विष पीना प्रारंभ किए, तैयार हो गए विष पीने के लिए। तो पार्वती जी ने क्या किया, वो तो तत् प्रभावज्ञा तत् भगवत शिवस्य प्रभावज्ञा, भगवान शिव के प्रभाव को जानती थी इसलिए उसने कहा ठीक है। उसने नहीं कहा नहीं बाप ऐसा मत कीजिए मैं विधवा हो जाऊंगी हाय हाय ऐसा मत ऐसा नहीं किया। तत् प्रभावज्ञा भगवान के प्रभाव को जानती थी पूरा, उसने अनुमोदन किया, अनुमोदत अनुमोदन किया, प्रसन्न चित्त से कह दिया ठीक है। भगवान पीने के लिए तैयार हो गए। इसको कैसे पिए, ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम, व्यापी हाला हलम जो समुद्र में सब और व्याप्त था, संसार में फैल रहा था विष, वो स्वयं ही समुद्र की तरह फैल रहा था। उस व्यापी अर्थात सर्वव्यापी विष के भंडार को ततः करतली कृत्य अपने हाथ पर ले लिए, एक हाथ पर। ऐसे दिखाया जाता है कि भगवान दोनों हाथ से पी रहे हैं लेकिन दोनों हाथ नहीं लगाए थे, समुद्र में समुद्र प्रमाण फैले हुए विष को करतली कृत्य अपने करतल पर अंटवा लिए। ये है ईश्वर का कार्य, ईश्वर की लीला। हम लोगों में से कोई एक लीटर अपने हथेली पर अटवा लेगा और समुद्र को अपने हाथ पर ले लेना पूरा, क्या शक्ति है। करतली कृत्य व्यापी, व्यापी मन जो विश्व व्यापक विश था उसको करतली कृत्य अभक्षयन महादेव कृपया कृपया भूत भावन, समस्त जीवों को पैदा करने वाले पालने वाले भगवान महादेव उस विष को पी गए। करतली कृत अभक्षयन महादेव, भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव, साधारण देवता नहीं है महादेव। जैसे मंत्रों में ये महामंत्र है वैसे ही देवताओं में भगवान शिव महादेव महादेव। समुद्र व्यापक विष को हथेली पर अटवा लेना ये तो कल्पना में आ ही नहीं सकता है मनुष्यों के देवताओं के, ये कैसे संभव है। और अभक्षयन महादेव उसको खा गए पी गए। कृपया भूत क्यों पिए, कृपा से सभी प्राणी सुखी रहे, जीवित रहें इसके लिए वे पी गए, क्योंकि भूत भावना समस्त जीवों को सुखी करने वाले हैं, समृद्ध करने वाले, पोषने वाले हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो विष इतना भयावह था, इतना भयंकर, कि भगवान शिव पर भी उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तस्यापि दर्शयामास स्वबीर्जम जल कलमस, वो जल का कलमस इतना प्रभावशाली था, उसको हलाहल विष कहते हैं, हलाहल कहते हैं और हाल हल कहते हैं, तीनों उसका नाम है, और कालकूट भी कहते हैं, कालकूट विष। इतना कठिन था, इतना भयावह था कि तस्यापि दर्शयामास, भगवान शिव पर भी स्वबीर्जम दर्शयामास अपना प्रभाव दिखा दिया। जच्चकार गले नीलम, वो अपने गले में उस विष को अटवा लिए, लेकिन उनके विष उनके गले को जलाकर काला कर दिया, नीला कर दिया, अपना प्रभाव दिखाया। भगवान शिव के गोरे शरीर पर वो अपना प्रभाव दिखाया कि उनका कंठ नीला हो गया, उनको नीलकंठ कहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रसन्नता से कह रहे हैं, तच साधुर विभूषणम, परम वैष्णव परम साधु भगवान शिव के लिए वो विभूषण हो गया, वो एक श्रृंगार हो गया। जल के दोष ने विष में अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन शिव जी का उससे सौंदर्य ही बढ़ा। आज तक जहां भी भगवान शिव जाते हैं सारे संसार में, तो जनता के कंठ को देखती है और कहती है कि काला हो गया है, जानते हो कि उन्होंने विश्व की रक्षा के लिए, समस्त प्राणियों के हित के लिए विष पिया था, उसी विष ने इनके कंठ को काला किया। तो सब जगह जस फैलता है, यह विभूषण है, भगवान शिव के लिए शोभा की बात है। किसी के शरीर में कोई कटा हो, दाग हो, हाथ कटा हो, और किसी कारण से या तो एक्सीडेंट में कटा होगा या चोरी में कटा होगा, तो जहां जाएगा तो लोग कहेंगे ये चोर है, उसका हाथ काट दिया गया, उसका ये हो गया। भगवान शिव का कंठ नीला है, तो जहां जाते हैं वहां यही कथा कहते हैं लोग। एक बार देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, विष उत्पन्न हुआ प्रथम उत्पादन में ही, सब मर रहे थे, सबकी रक्षा के लिए भगवान ने विष पिया था, इसीलिए गला नीला हुआ। वो सब जय जयकार करते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसीलिए सुखदेव जी कहते तच्च साधोर विभूषणम, वह परम साधु शिरोमणि भगवान शिव के लिए विभूषण हो गया, गहना हो गया। अब कमेंट दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनम तब्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। भगवान शिव समान जनता की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए विष पी गए, क्या यह कार्य उन्होंने उचित किया? सुखदेव गोस्वामी जैसा श्रीमद् भागवतम का महान अथॉरिटी अधिकारी, भगवान के परम भक्त, जो मुनियों के गुरु हैं, जहां भगवान वेदव्यास देव हैं, जहां भगवान नारद जी हैं, सारे ऋषि मुनि भरे पड़े हैं, भगवान परशुराम जी हैं, उस सभा में बोल रहे हैं, भगवान शिव ने जो किया यही करना चाहिए, यही उचित है। तप्यन्ते लोकतापे न प्रायशो साधु प्रायशो जन, यही देखा गया कि प्रायः साधु जन, प्रायः वैष्णव जन लोकताप से तप्त होते, लोक माने लोग, लोगों के दुख से, जीवों के दुख से दुखी होते हैं, उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। परमाराधनम तब भी, यही है भगवान कृष्ण की परम आराधना। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यही है भगवान श्री कृष्ण की परम आराधना। तो मानो पार्वती जी पूछ सकती है कि अरे जीवों की सेवा भगवान की आराधना कैसे हो जाएगी? साधारण जीव, मायाबद्ध जीव है, इनकी आराधना, इनको प्रसन्न करना, इनको सुख देना, ये भगवान कृष्ण की सेवा कैसे हो जाएगी? भगवान शिव कह रहे हैं कि परमाराधनम तद भी पुरुषस्याखिलात्मन, यही सबसे बड़ी आराधना है भगवान कृष्ण की। क्यों आराधना है? क्योंकि वो अखिल आत्मा है, सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा होने से जीव की सेवा अंततः भगवत सेवा में ही प्रतिफलित होती है। कहने का आशय ये है और ये वाक्य हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और भी परम शब्द लगा रहे हैं, परमाराधनम तत् ही पुरुषस्य श्रीकृष्णस्य पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तम की यही परमाराधना है, क्योंकि वे अखिलात्मा है, सब में है, सबके हृदय में है। अगर किसी को सुखी किया जाता है तो उसे भगवान सुखी होते हैं, इसको अच्छा मानते हैं। बहुत से जीव दुखी हैं, बहुत से परिवार दुखी है, कोई किसी के परिवार में बच्चा रोगी है, दुखी है, ये है, तो किसी प्रकार से व्यक्ति सहायता करता है, सेवा करता है, तो ये भगवान की आराधना है, यही भगवान की भक्ति है, यही पूजा है। इस अवसर पर परम प्रमाण सुखदेव गोस्वामी हैं जो बोल रहे हैं, तो कोई भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ रहस्य है। तो यही है परम आराधना भगवान की। शास्त्र में प्रश्न उठाया गया है कि संसार में सबसे कोमल वस्तु क्या है, सबसे मृदुल वस्तु क्या है, तो बताया गया है सता मन, भक्तों का, सज्जनों का मन, यही सबसे कोमल वस्तु है। तो कहा गया नहीं, माखन सबसे कोमल है, नवनीत सबसे कोमल, तो कहने नहीं, नवनीत अपने ताप से द्रवित होता है, लेकिन संतों का मन दूसरे के दुख से द्रवित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कह न जाना। विद्वानों ने, कवियों ने कहा है कि संत का हृदय नवनीत की तरह होता है, लेकिन ये उचित नहीं कहा, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीत, पर दुख द्रवही संत सुपनीत। जब नवनीत पर, माखन पर आंच लगती है तो अपने आंच से वो पिघल जाता है, परंतु संत तो वे हैं जो दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं, दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। तो नवनीत से भी अधिक मृदु हृदय है संतों का। और भगवान शिव संत शिरोमणि वैष्णवा नाम जथा संघ, दूसरे के दुख से द्रवित होकर तो उन्होंने विष पान किया। यह कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निशम्य कर्म तत्क्षम भोर देव देवस्य मेढुसः। देवताओं के भी देवता और भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाले भगवान शिव के इस कर्म को देखकर, विषपान रूप कर्म को देखकर, वहां जुटी हुई सभी प्रजा जय जय बोलने लगी, प्रशंसा करने लगी, और दाक्षायणी माता सती ने भी भूरी भूरी प्रशंसा किया, और ब्रह्मा जी और भगवान अजित वैकुंठ ये सभी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में इसीलिए भगवान अजित ने विषपान नहीं किया, केवल भगवान शिव को जस देने के लिए। आज उनकी प्रशंसा भगवान भी कर रहे थे, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, दक्षायणी सती जी कर रही हैं, और सारी प्रजा वहां प्रशंसा कर रहे, सब लोग साधु साधु धन्यवाद। वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कर्म किया भगवान शिव ने, ये सब कह रहे थे। जो पी रहे थे तो प्रस्कन्नम पिबतः पाणे, उनके पानी से, ये पाणे शब्द है, एक हाथ से पी रहे थे, अगर दोनों हाथ से पिए होते तो पानी भ्याम शब्द रहता। प्रस्कन्नम पिबतः पाणे, जब वो पी रहे थे पानी पर रहकर, तो प्रस्कन्नम कुछ एकाध बूंद चू गया हल्का, तो किंचित बहुत थोड़ा गिरा, उसी को वृष्टि का ही विशेषज्ञो दंद सुकाश्चते, ये पर उसको पीले ग्रहण कर लिए। वृष्टिक बिच्छू अहि सांप और विषैली लताएं और दंद सुक, और भी सर्पों की जातियां हैं, जैसे कई विषैले जीव हैं वो, और ये अपर है, और भी दूसरे जो है उसमें श्रील प्रभुपाद मच्छर भी लिख रहे हैं। यहां नहीं लिखे हैं, और जब टीका में है मच्छर में ही थोड़ा थोड़ा हलाहल विष आया। जितने सांप बिच्छू और दंड से कुत्ते आदि हैं, कोई 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 विषैला कुत्ता, तो उनमें थोड़ा सा है ये, इसलिए भगवान शिव हल्का गिराए कि विष का प्रभाव दिखाने के लिए कितना भयावह है। उस समय जो पिया होगा उस कितना भयंकर विष उसमें होगा, उसकी जाति में जन्म लेने वाले में ये विष अब तक आ रहा है, कितनी पीढ़ियां बीती होंगी, क्या क्या तो काल कुचहरा, इतना भयंकर था, उसकी तीव्रता को विज्ञापित करने के लिए थोड़ा सा गिरा दिया। ऐसा नहीं था कि उनके हाथ से गिर गया, जो समुद्र के को हाथ पर ले सकते हैं पानी पैसे गिर जाएगा, जल गिर जाएगा, थोड़ा दुनिया देखे कि कितना तीव्र है ये बताने के लिए थोड़ा सा गिराया था। वो पिए कहते हैं हल्का, थोड़ा थोड़ा चाटे थे, इसी से इतना विष हो गया है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने विष पान किया, इसलिए भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, बहुत प्रिय हैं वैष्णवों के भक्तों के। अब कल विष के बाद रत्न उत्पन्न होंगे, रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न श्री लक्ष्मी जी होंगी, तो लक्ष्मी जी के विवाह की कथा कल आएगी भगवान के साथ। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।